તારીખ 3/3/1996 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 866 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું મહાવીરજીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 2 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ફાટે છે તથા અવાજ ધીમો છે.
શ્રીમદરાજ ચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 866 ગુજરાતી માં પૃષ્ઠ સંખ્યા 632 હિન્દી મેં 643 નંબર કા પેજ હૈ. પત્ર મોરબી કે एक न्यायाधीश थे उनके पर लिखा गया है. दारसी भाई कुशल चंद करके उस जमाने में मोरवी में न्यायाधीश थे, जस्टिस थे. आग में आ रही शास्त्र के अभ्यासी थे और जज साध होने के बावजूद भी बहुत नरम प्रकृति के थे, सरल प्रकृति के थे, योग्यता वाले थे. इतना अच्छा वचन प्रयोग इनके पत्र में आया है वो ये सूचित करता है कि उनकी योग्यता कैसी होगी. लिखते हैं कि द्रव्यारोग परम गंभीर और सूक्ष्म है. भगवान जिनेन्द्र देव की दिव्य ध्वनि सुन करके गंधर्व देव ने उसको 4 प्रयोग में विभाजन करके प्रतिपादन किया है. चारों योग में अपने अपने विषय के अनुसार, अनुयोग अनुसार सिद्धांत है, कथन है. फिर भी चारों योग में जो कुछ कहने का आशय है वो चारों अनुयोग में एक ही है कि अध्यात्म तत्व जो आत्मा है उनको समझाना है और उसी का ग्रहण कैसे होवे यही बात करना है. आत्मा क्या है, कैसा है और इसकी प्राप्ति माने अनुभूति कैसे हो, ये दो ही बात पर सभी आगमों के कथन है. फिर भी कहीं सीधी बात है, कहीं परंपरागत बात है. मैंने कहीं डायरेक्ट बात करते हैं, कहीं इनडायरेक्टली बात करते हैं. द्रव्यानुयोग है वो आत्मा की सिद्धि बात करने वाला अनुयोग है. अध्यात्म तत्व का प्रतिपादन द्रव्यानुयोग में सीधा सीधा मिलता है. इसलिए ज्ञानियों ने इस विषय पे मुख्यतया आत्मा को दिखाने का प्रयास किया है. लिखते हैं कि द्रव्यानुयोग परम गंभीर है और सूक्ष्म है. निर्ग्रंथ प्रवचन का रहस्य है कि क्या है? निर्ग्रंथ का प्रवचन का रहस्य है, शुक्ल ध्यान का अनन्य कारण है, इतना प्रथम वचन इतना लिखा है। द्रव्यानी लोग हैं वो परम गंभीर है, मैंने उसकी गहराई बहुत है और स्वभाव को प्रतिपादन करने वाला हमेश है, उसकी सूक्ष्मता भी बहुत है। वस्तु का स्वभाव सूक्ष्माति सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। और गंभीर है मैंने उसकी गहराई बहुत है। गहराई क्या चीज होती है? कि ऊपर ऊपर से दिखो तो उतना नहीं दिखे, परंतु उसके भीतर में जाओ तो बहुत कुछ अंदर में भरा हुआ दिखे। ज्ञान दो तरह का होता है, विशालता का भी और ऊंडाई का भी, गहराई का भी। विषय की विशालता एक चीज होती है, गहराई दूसरी चीज होती है। द्रव्यान योग विशाल भी है, सूक्ष्म भी है और गहरा भी है। कितना गहरा है तो भावात्मक दृष्टि से देखें तो उसकी गहराई भी अनंत है। जैसे समुद्र का पानी गहरा होता है तो वहां पानी का तरंगे बहुत नहीं दिखे और किनारे पे बड़े बड़े मोजे दिखे, तरंगे बहुत दिखे, लेकिन जितनी गहराई बीच में है उतनी किनारे पे नहीं है। वहां पानी शांत दिखता है, शांत दिखता है इसलिए कम है, ऐसा नहीं है, बहुत गहराई है वहां। ऐसे जो महात्मा द्रव्यानी योग में स्थिर हो गए, द्रव्यानी योग का विषयभूत अपना परम तत्व में स्थिर हो गए, उनकी गहराई उनकी शांति बहुत बहुत है। उसका नाम बाहर से निकलता नहीं है। श्रीमद जी ने अपनी 30 साल की उम्र में मुनि होने की भावना भाई है। अपूर्व अवसर का एक काव्य लिखा है, उसमें लिखा है कि मेरे को ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा, मैं सभी बाह्याभ्यंतर सभी प्रकार के बंधन को तोड़ करके ध्रुव क्षेत्र काल भाव के प्रतिबंध को छोड़ करके मस्त रह करके, आत्मा में मस्त रह करके कहीं भी विहार करूं, कहीं भी विचरूं। उसने अनेक प्रकार के उपसर्ग परीक्षा की बातें की हैं। ये नाप मुनिराज के दशा का नहीं है, जो जो प्रकार के उपसर्ग परीक्षण बताए हैं या अनुकूलताएं भी बताई हैं, कुछ भी हो, इनके दशा का नाप यहां से तो नहीं निकलता। लेकिन करे भी क्या, जगत में जो पदार्थ उत्कृष्ट के उत्कृष्ट उपमा योग्य होता है उनकी बातें की जाती हैं। ये नाप उत्सर्ग परिसर का है, मुनिराज की दशा का नहीं है। गुरुराज की दशा तो इससे कहीं आगे है। दृष्टांत सीमा को प्राप्त होता है, गुरुराज की दशा की सीमा वहां समाप्त नहीं होती है, लेकिन दिखाने के लिए जो भी जगत में पदार्थ होते हैं उनसे बात की जाती है। ऐसी शांत और गंभीर दशा कहां से आई कि द्रव्यानुयोग का परिणाम होने से आई है। द्रव्यानुयोग का परिणाम हो जाता है तो ऐसी दशा होती है कि जिसका नाप किया नहीं जाता, कर सकते नहीं, ऐसा द्रव्यानुयोग परम गंभीर है, बहुत बहुत गंभीर है और निर्ग्रंथ भगवान का ये प्रवचन का रहस्य यहां भरा हुआ है। रहस्य मैंने टॉप सीक्रेट 12 अंग में जो कुछ रहस्य भरा है वो द्रव्यानुयोग में भरा है। तो द्रव्यानुयोग में भी खास करके जो विधि का विषय है वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। स्वामी भाव की प्राप्ति कैसे हो ये विषय सबसे रहस्यभूत है। वाणी में भी इसका संकेत आता है, द्रव्यानुयोग में भी इसका संकेत आता है, संकेत मात्र रूप से वो बात कही जाती है। स्वभाव में तो अनेक गुण है, उसमें जितने भी वचन गोचर है उसका कथन आता है, जो वचन अगोचर है इसका कथन तो हो ही नहीं सकता, तो उतना विस्तार होता है। लेकिन विधि के विषय में वो एक स्वरूप की अभेद आराधना होने की वजह से जिसका भेद विकल्प नहीं है उसका वर्णन भी कैसे हो। जिसमें विकल्प का भी भेद नहीं हो, ऐसी जो विधि निर्विकल्प है वो परिणमनी निर्विकल्प है, तो बस निर्विकल्प कह करके रह जाना पड़ता है। फिर भी द्रव्यानुयोग में जो अनुभूति संपन्न ऐसे हमारे निर्ग्रंथ महात्माएं हुए, कुनकुनाचार्य, अमृतचंद्राचार्य, वीर सेन स्वामी और समन भद्राचार्य जैसे जैसे महान हुए, उन्होंने अपने प्रवचन में उस रहस्य को यथाशक्ति खोला है, खोलने का प्रयास हुआ है। और मुमुक्षु जीव को यदि योग्यता हो, पात्रता हो, तो संकेत मात्र से पूरी विधि को ग्रहण करने की योग्यता, अधिक योग्यता की प्राप्ति हो जाती है उन प्रवचन के निमित्त से। ऐसे गहन और गंभीर भावों की अभिव्यक्ति द्रव्यानुयोग के निर्ग्रंथ प्रवचन में कुछ अंश में जो आती है वो दूसरे को पूरा विधि को ग्रहण करने का निमित्त पड़ जाती है। प्रत्यक्ष योग की बात तो दूसरी होती है, वचन जो कथन है द्रव्यानुयोग का उसमें भी ये निमित्तत्व है, निमित्तपना है कि पात्र जीव को आत्मकल्याण के समीप ले जाती है। प्रवचन का रहस्य और शुक्ल ध्यान का अनन्य कारण है। शुक्ल ध्यान जिसको होता है वो केवल ज्ञान तक चालू रहता है, तेरहवें स्थान तक। उसका कारण कोई हो तो द्रव्यानी योग है, ज्ञान योग का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है वो तो वो है कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की जो भिन्नता है ये द्रव्यमान योग का सबसे बड़ा पदार्थ बड़ा सिद्धांत है। किसी भी जीव को किसी भी प्रकार का दुख हो, उपाधि हो, संक्लेश हो, कुछ भी हो, इस सिद्धांत का ग्रहण होते ही ये दुख और उपाधि खत्म हो जाती है। उस विषय में तो चैलेंज कर सकते हैं कि आप किसी भी प्रकार के दुख को बताइए जो भिन्नता के कारण से समाप्त नहीं हो सकता हो, बताइए। अपनी आत्मा सर्व से सर्वथा भिन्न है, सर्व से सर्वथा भिन्न ज्ञानमय है, बस उतने अंतर सावधानी होते ही स्वरूप की सावधानी आते ही सब प्रकार के उपाधि क्लेश उसी वक्त गायब हो जाएगा। एक भी प्रकार ले आओ, दूसरे दूसरे संयोग जो होते हैं वो भिन्न क्षेत्रवर्ती होते हैं, भिन्न कालवर्ती होते हैं, वो तो आत्मा से दूर है ही, लेकिन शारीरिक वेदना वो उतने क्षेत्र से समीप है जिसको काल योग कहते हैं। आत्मा की भी इसके साथ संयोग में रहने की कोई योग्यता इतनी समीप है कि वेदना से उपयोग को हटाना कोई आसान बात नहीं है। उसमें भी तीव्र असाता वेदनी हो वहां तो वहां से तो उपयोग हटता ही नहीं, हट सकता नहीं ऐसा लगता है, फिर भी द्रव्यानुयोग का परिणाम होता है तो तीव्र असाता के काल में भी असाता की सत्ता से जो कर्म और नोकर्म के परिणाम है इससे भिन्न ज्ञान में सत्ता का अनुभव करके अधिक निर्जरा और अधिक आत्मकल्याण कर सकते हैं महात्मा लोग। और दुख से मुक्त हो सकते हैं, असाता वेदने का दुख का अनुभव नहीं करते। और इसका बहुत बड़ा सबूत है सातवीं नारकी का। सातवीं नारकी में उतनी असाता होती है, उतनी असाता होती है जिसका वर्णन नहीं कर सकते कोई, दिव्य धीमे भी नहीं कर सकते। सदमस्त की वाणी तो कहां से करेगी, वो केवल ही जानते हैं और वो नारकी के जीव भोगते हैं, बाकी वो पीने की चीज नहीं रही। यानी यहां की असाता तो इसके अनुकूल भाग में है, उसका कोई यहां अंश भी देखने को नहीं मिले। उतनी असाता होने के बावजूद भी वहां जब आत्मानुभव होता है तो आत्मा के आनंद के साथ ही अनुभव होता है। जो अनुभव होता है तो अपूर्व आनंद का वहां अनुभव होता है, और अशाता वेदनी का दुख उस वक्त तो नहीं होता। जिस वक्त आनंद का अनुभव होता है उस वक्त तो अशाता वेदनी का दुख अनुभव में नहीं रहता, क्योंकि उपयोगी नहीं है उसका। जो शारीरिक अशाता है उस पर से तो उपयोग हट गया और आत्मा में लीन हो गया। सातवीं नारकी की अशाता वेदनी से उपयोग को छुड़ाने का सामर्थ्य आत्मा के आनंद के अनुभव में वहां भी है, ये इस बात का सबूत है कि किसी भी परिस्थिति में दुख से मुक्त होना हो तो द्रव्यानुभव का परिणमन से जो आत्मानुभव होता है वहां से दुख मुक्ति हो सकती है। संसार में तो मृत्यु का दुख, जन्म मरण का दुख सबसे अधिक प्रसिद्ध है, फिर भी ज्ञानी को तो ये मृत्यु महोत्सव का प्रसंग हो जाता है, दुख का या शोक का प्रसंग नहीं रहता। रत्नकरण श्रावकाचार में आचार्य श्री सुमन भद्र स्वामी ने बहुत अच्छा बात लिखा है कि ये महोत्सव हो गया, महोत्सव में जैसे आनंद होता है ऐसे ज्ञानियों को साधकों को उस प्रसंग में अधिक आनंद की प्राप्ति होती है, अवश्य अवश्य होती है। वो उतने विशेष जागृत उसी अवस्था में हो जाते हैं। ये द्रव्यादि योग का परिणमन की देन है, इसका मूल्य कितना कि इसका मूल्य करने के लिए जगत में कोई पदार्थ है ही नहीं, कोई पदार्थ से इसका मूल्यांकन हो ही नहीं सकता। सबसे अधिक मूल्यवान होने से उनकी मुख्यता सबसे अधिक रहे तो उसमें कौन सी अनुचित बात है? उसमें कोई अनुचित बात नहीं है। और हमारे पुराण हमारा कथानुयोग बोलता है कि बड़े बड़े चक्रवर्ती अपने 24 तीर्थंकर में तीन तो थे, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरुणनाथ और भरत आदि चक्रवर्ती, 12 चक्रवर्ती होते हैं ना, तीन तो तीर्थंकर थे। 12 में से 10 तो ज्ञानी पुरुष थे, तो क्षण मात्र में 6 खंड के साम्राज्य को और संपत्ति को त्याग करके निकल गए, जंगल में चले गए। इस बात का वो सबूत के सबूत है कि जगत में कोई पदार्थ इसकी बराबरी में है ही नहीं, किसी का मूल्य ही नहीं है। किस चीज की कमी थी? पंचेंद्रिय के किसी भी विषय की किसी भी प्रकार के कमी ना जिसको नहीं थी। हजारों देवता उनकी सेवा में रहते हैं, देव जिसके अनुचर होते हैं, मनुष्य नहीं। अपने यहां तो जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं वही अनुसर होते हैं, कोई अपर क्लास के लोग अनुसर नहीं होते हैं। लेकिन चक्रवर्ती मनुष्य होने के बावजूद भी देव उनकी सेवा में आते हैं, इतना पुण्य लेकर के आते हैं, फिर भी वो उनको छोड़ के निकल जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने आत्मा और आत्म कल्याण के आगे जगत में किसी भी पदार्थ का मूल्य है ही नहीं। जिसको मूल्य है जगत के पदार्थ का, वो जगत के पदार्थों में परिभ्रमण करता रहेगा। जिसने अपना मूल्यांकन करके जगत के पदार्थ का मूल्यांकन खो दिया, छोड़ दिया, वही सारे जगत से ऊपर उठ करके निर्वाण मार्ग को प्राप्त करके निर्वाण पद की प्राप्ति करेंगे। और ये दरमियानी योग का परिणाम से होता है। शुक्ल ज्ञान से केवल ज्ञान समुत्पन्न होता है, शुक्ल ज्ञान से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो महाभाग्य द्वारा, महाभाग्य से यह द्रव्यानु योग की प्राप्ति होती है। जिसकी होनहार अच्छी है उनको ये द्रव्यानु योग की प्राप्ति होती है। यानी द्रव्यानु योग की जिसको प्राप्ति हुई उनको ही ज्ञानी भाग्यशाली कहते हैं, दूसरे जीवों को भाग्यशाली नहीं कहते हैं। जगत में तो संपन्न लोगों को भाग्यशाली माना जाता है, लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि अलग होती है। ज्ञानी की दृष्टि में वे उपाधि वाले और दुखी देखे जाते हैं, वो उनको बेचारे समझते हैं, क्या ये बेचारे दुखी हैं, संपन्न होने के बावजूद भी बेचारे दुखी हैं, क्योंकि उपाधि को, उपाधि के टोकरा को लेकर के फिरते हैं और छाती में भी उपाधि। तो कहते हैं कि ज्ञानी की दृष्टि अलग होती है। वो तो जो दुर्ज्ञानी लोग की प्राप्ति से निरुपाधि हुए उनको ही भाग्यशाली मानते हैं। क्यों? कि बहुत अल्प काल में वो तीन लोग के नाश बन जाएंगे, सर्वोत्कृष्ट पद की प्राप्ति करेंगे। बाहर की दृष्टि से भी देखो तो क्या है, हमारे जो जिनेन्द्र हैं, तीर्थंकर हैं, वो शतेन्द्र मंदित है कि नहीं है? सौ सौ इंद्र जिसके समूह शरण में आते हैं, मंदन करते हैं, सौ इंद्र मैंने तीनों लोक के, नागेंद्र भी है वहां और मनुष्य के चक्रवर्ती आदि नरेंद्र भी है और देवेंद्र भी है, तीनों लोक के हैं। तीनों लोक के पुण्यशाली से पुण्यशाली जो है वो सभी इनको वंदन करते हैं, और पुण्यशाली के आगे तो सारा जगत ढलता ही है, तो उसके पेट में सब आगे, सारा जगत आ गया, इसलिए उनको यहां भाग्यशाली माना गया है। और उन्हीं सच्चा सद्भाग्य है कि जिस द्रव्यानु योग की प्राप्ति से जीव अंत में जाके सिद्धालय में विराजमान होता है। अब ये प्रश्न यहां हो सकता है कि ऐसे द्रव्यानु योग की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा प्रश्न यहां हो सकता है। इसका उत्तर जैसे दिया हो उस तरह से ये पत्र लिखा गया है कि दर्शन मुनि का अनुभव घटने से या कम होने से, या दर्शन मुनि का अभाव होने से, निवृत्ति होने से, और द्रव्यानु योग का परिणमन होता है। द्रव्यानु योग का परिणमन कैसे होता है कि जिसको दर्शन मुनि का अनुभाग कम हो गया हो, वो द्रव्यानु योग का परिणमन होने के लायक होता है। देखिए यहां से मुमुक्षु के लिए एक प्रयोजनभूत बात निकलती है। मुमुक्षु की भूमिका में उसके परिणाम कैसे होने चाहिए। जो दर्शनों का नाश होता है वो तो ज्ञान दशा की प्राप्ति में ही होता है। जब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है तो दर्शनों का नाश हो जाता है, परंतु दर्शन मुनि का अनुभाग जो है वो तो मुमुक्षु की भूमिका में कम होता है, और वो बात उन लोगों को लागू पड़ती है। चारित्र मुनि का अनुभाग घटने से कोई उतना लाभ नहीं है जितना लाभ दर्शन मुनि का अनुभाग घटने से होता है। यानी स्वामी मुनि के समीप जाने के लिए, सम्यक्त्व के सम्मुख जाने के लिए दर्शन मुनि का अनुभाग घटना बहुत जरूरी है। चारित्र मुनि का अनुभाग तो अनंत बार कम हुआ है, शुक्ल जैसे हुई कि नहीं हुई। हाँ? जब द्रविलिंगी मुनि हुए हम लोग, वो है हमारा भूतकाल सब हुआ है, तो शुक्ल लेशिया धारण करके इकट्ठी सागर की स्थिति में नवमी ग्रह तक गया कि नहीं गया जी। वहां तो चारित्र मुनि का रस तो बहुत कम हुआ है, लेकिन यथार्थ प्रकार से नहीं हुआ। दो प्रकार से होता है, यथार्थ प्रकार से होता है तो उसका इफेक्ट दर्शन मुनि पर आ सकता है। ऐसा होता है कि दर्शन मुनि का अनुभव घटने से कषाय रस की मंदता सहज होती है, थोड़ी या कम मात्रा में हो जाती है, लेकिन वो यथार्थ होती है। पर अयथार्थ प्रकार से तो शुक्ल लेशा हो जाए तो भी उसका कोई मूल्य नहीं है। ठीक, हाँ, यथार्थ प्रकार से होनी चाहिए, वो भी यथार्थ प्रकार से होनी चाहिए। जैसे कुदेव आदि को मानने से, यानी इस क्षेत्र में बैठे हैं तो चमत्कार आदि को मानने से हाँ दर्शन मुनि तीव्र हो जाता है। क्या होता है? दर्शन मुनि तीव्र हो जाता है। और सच्चे देवगुरु शास्त्र को मानने दर्शन मुनि के अनुभाग यथार्थ प्रकार से कम हो जाए, उनकी भी एक श्रेणी है। उस श्रेणी में अगर कोई जीव प्रवेश करता है, आगे बढ़ता है, तो वो अवश्य अवश्य दर्शन मुनि का नाश करने तक पहुंच जाता है, यानी ज्ञान दशा को, मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि वहां कहते हैं कि वहां द्रव्यानु योग परिणमन करता है, ये द्रव्यानु योग के परिणमन से ऐसा होता है। द्रव्यानु योग में सीधा अध्यात्म है, डायरेक्ट, और बहुत सी जगह ऐसी है द्रव्यानु योग के सिद्धांतों की बातों की कि वहां अध्यात्म को अलग कर ही नहीं सकते, इतना अध्यात्म जुड़ा हुआ है द्रव्यानु योग के साथ, उसी की बात चलती है। द्रव्यानु योग माने पदार्थ विज्ञान है, द्रव्य का विज्ञान है, और द्रव्य के विज्ञान के साथ अध्यात्म का सीधा संबंध है। उपदेश बोध और सिद्धांत बोध, ऐसे बोध का दो विभाजन है, उसमें ये सिद्धांत बोध में आता है। लेकिन अध्यात्म में तो दोनों का संयोजन है, दोनों का सुयोग है, दोनों की सुसंगतता है, उपदेश बोध की और सिद्धांत बोध की भी दोनों की है, उसी को यह द्रव्यानु योग का परिणमन कहता है, कहते हैं। बात क्या लिया है, द्रव्यानु योग परिणमता है किसको, कि जिसको उपदेश की भी असर हो जिस परिणाम में, और जिस परिणाम में सिद्धांत की भी असर हो। अकेले उपदेश की असर हो और सिद्धांत के असर न हो तो वहां द्रव्यानु योग का परिणमन नहीं माना जाता। भले ही कषाय रसमंद हुआ हो, भले ही कुछ मात्रा में दर्शन का अनुभाग भी कम हुआ हो, तो भी वो यथार्थ प्रकार से नहीं हुआ। इसलिए मुमुक्षु की भूमिका में यथार्थता का महत्व बहुत है। कल बात चली थी कल के स्वाध्याय में कि हमारी समझ सच्ची हो वो पर्याप्त नहीं है, सच्ची होने पर भी यथार्थ होने एक दूसरी बात होती है। इसका इतना विस्तार नहीं हुआ था लेकिन बात तो चली थी। जैसे कि हम शास्त्र पढ़ते हैं, आगम पढ़ते हैं, आगम अनुसार हमारी समझ होती है, न्याय युक्ति तर्क अनुमान में आगम और आगम से बात तो सही समझ में आती है, फिर भी उसमें यथार्थता आना एक दूसरी बात होती है। परलक्षी ज्ञान में ये सब बात हो सकती है कि आगम से मेल खाए, युक्ति से, न्याय से, तर्क से, अनुमान से, लेकिन जब तक वही बात आत्मकल्याण में सार्थक नहीं हुए वहां तक उसकी यथार्थता मानी गई नहीं। और इसलिए हमारे यहां वो बात भी प्रसिद्ध है कि शास्त्र पढ़ने वाले को भी शास्त्राभिनिवेश तो हो ही जाता है, उसका क्या कारण, शास्त्र अभिनिवेश माने क्या, कि शास्त्र ज्ञान का अहम भाव, ज्ञान मद जिसको बोलने में आता है, जैसे धन मद होता है, शरीर बल का मद होता है, कुल मद होता है, जैसे ज्ञान मद हो जाता है। एक नाजुक परिस्थिति वो है मुमुक्षु की, तो वो पर्याय बुद्धि तो है, दृढ़ दृष्टि तो हुई नहीं, जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ, स्वानुभव नहीं हुआ, वहां तक तो द्रव्य दृष्टि तो प्रकट हुई नहीं, पर पर्याय दृष्टि तो है ही। उस पर्याय दृष्टि में रह करके जो भी किसी प्रकार का सुधार आता है मुमुक्षु की भूमिका में, मुमुक्षु की भूमिका में अनेक प्रकार के धर्म साधन करता है जी, कोई पूजा भक्ति करता है, कोई शास्त्र स्वाध्याय करता है, कोई दयादान करता है, कोई जप तप करता है, कोई यात्रा करता है, कुछ न कुछ करता है, कोई व्रतादि संयम भी पालन करता है। किसी भी प्रकार का फेरफार होता है धर्म साधन के कारण से, और पर्याय बुद्धि है, उस पर्याय बुद्धि में इसका अहम भाव नहीं हो, ऐसी परिस्थिति कहां से लाएं? बहुत नाजुक परिस्थिति है। धर्म साधन करेंगे तो पर्याय में सुधार तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन किसी प्रकार का आएगा ही आएगा। जैसे शास्त्र पढ़ेंगे तो शास्त्र ज्ञान बढ़ेगा, सूक्ष्म ज्ञान बढ़ेगा, और व्रतादि करेगा, त्याग करेगा तो कषाय की मंदता होगी, पूजा भक्ति करेंगे तो कषाय मंद होगा। कुछ न कुछ तो ज्ञान में और चारित्र गुण में, ज्ञान के क्षोभ में और चारित्र के क्षोभ में फेरफार तो होगा ही होगा। और दर्शन में तो खड़ा है, वो क्या करता है, मद को खड़ा कर देता है, ये दर्शन में का ड्यूटी हो जाती है, पर्याय बुद्धि है तो उसका अहम को खड़ा करता है। जिसको दर्शन मोह का अनुभव यथार्थ प्रकार से गलने के लिए परिस्थिति में आता है, उस श्रेणी में जो आता है, उन्हीं को यह अनिष्ट पैदा नहीं होता। ये बहुत बड़ा अनिष्ट है दर्शनों की वजह से, उसके कारण से पर्याय में जो कुछ गुण हुए, लाभ हुआ, उसका अहम वाला एक बहुत बड़ा अवगुण हो जाता है, इसका क्या करें। वो एक बहुत बड़ी समस्या है ये, और बहुत बहुत नाजुक परिस्थिति है कि इसके लिए करें क्या। तो इसके लिए यथार्थ प्रकार से दर्शन का अनुभव घटे तो वहां से वो बच सकता है। अगर यथार्थ प्रकार से कम नहीं हुआ तो ये दर्शन में जो कम हुआ होगा सच्चे देवगुरु शास्त्रों और सत्संग के माध्यम से या सत्शास्त्र के निमित्त से, वो बढ़ने में देर नहीं लगेगी। मंद होगा बहुत परिश्रम से, तीव्र होने में एक ही उदय बस हो जाएगा, एक प्रसंग आ जाएगा, सब कमाई साफ।
मुझे बोलना तो नहीं चाहिए पर रोते नहीं रुकने था कि दर्शन हो, दर्शन हो का
यह दर्शन हो कर्म की बात नहीं चलती है माजी, ये अपने दर्शन मोह वाले परिणाम की बात चलती है। नहीं पढ़ सकता है, यथार्थ आत्मलक्षी ज्ञान या समझ से दर्शन मोह ढीला पड़ सकता है। फिर से कर सकते हैं, वो लागू हो सकता है, नौवां अधिकार वाली बात जो है वो लागू हो सकती है। कोई बात नहीं। कर सकते, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई सब्जेक्ट के रिलेटेड प्रश्न हो तो उसकी उसके लिए इतनी स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन नहीं रखना है। ठीक है, कभी कभी विषय खुल सकता भी है, कोई विषय के सुसंगत प्रश्न हुए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई विषय खुलेगा और खुलेगा तो समूह को इसका लाभ मिलेगा और ये प्रश्न करने वाले का उपकार समझना, आपत्ति नहीं समझना, तो उतना तो अपने को जगा रखना ही है, उसमें कोई इतना मजबूत प्रतिबंध नहीं करने का है। प्रश्न को और दोहराए कि जीव किसी न किसी प्रकार के पुरुषार्थ से दर्शन मोह को भी हटा सकता है कि नहीं हटा सकता है? कि हटा सकता है, अगर ऐसा नहीं होता तो कोई मुमुक्षु से ज्ञानी हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। लेकिन हमारी जो समस्या है वो बहुत जटिल है, मामूली नहीं है, क्योंकि अनंत काल हमने गंवाया है और अनंत काल धर्म साधन भी बहुत किए। श्रीमद जी ने 24 साल की उम्र में काव्य लिखा है, हिंदी में लिखा है, यम नियम संयम आप कियो पुनि त्याग विराग अथाग लियो पुन वास लियो मुख मौन रहो दृढ़ आसन पद्म लगाई दियो। ऐसे ऐसे सब शास्त्र के नए धारी हे मत मंडन खंडन बहुत किए, बहुत सी बातें लिखी है। वो साधन बार अनंत कियो तदपि पछु हाथ हजू न पड़ो। तो वो बात तो है कि ये साधन करते हुए साधन से जो लाभ होता है परिणाम में, इससे ज्यादा नुकसान इस साधन का अभिमान करने से होता है, इस साधन का अहंभाव करने से होता है। और वहां हमको सतर्क रहना है, इस जगह पे हमको जागृत रहना है, वहां रेड लाइट रखी है। तो वो कैसे होता कि यथार्थ प्रकार से दर्शन को मंद किया जाए, तो ये बात बन सकती है। अब इसके आगे की जो बात है कि वो यथार्थता में क्या चीज है, वो प्रश्न हम आज की रात्रि चर्चा में लेंगे। ये प्रश्न आप कर सकते हो क्योंकि यहां थोड़ा विषयांतर हो जाएगा। यहां तो उतनी सी बात है, टू दी पॉइंट जो बात है वो उतनी है कि मुमुक्षु भी यथार्थ प्रकार से आत्मलक्षी समझ से स्वलक्षी प्रयास से पुरुषार्थ से यथार्थ प्रकार से दर्शन का अनुभाग तोड़ सकता है और मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर सकता है। अनंत जीवों ने ऐसा किया है, हम भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं सो बात नहीं है। उस तरह से दर्शन का अनुभाग कम हुए वही हमारा ख्याल होना चाहिए। इसलिए दर्शन के सूचित परिणाम कैसे कौन से कैसे होते हैं वो भी हमारी समझ में आने चाहिए, और उसकी अनुभव घटने से कैसे कैसे परिणाम होते हैं, यथार्थता आने से कैसे कैसे परिणाम होते हैं वो भी हमारी समझ में होनी चाहिए। बात अगर ये बात सही हुई तो हम हमारी भूमिका से ऊपर उठ करके स्वानुभव की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और अपना कार्य में हम सफल हो सकते हैं। एक बात तो लिया है, हाँ, प्रयोजन सिद्धि में वो बात है, एक आर्टिकल है प्रयोजन सिद्धि नामक, जिसमें दर्शन का अनुभव क्रमशः मुमुक्षु की भूमिका में कैसे कम होता है यथार्थ प्रकार से, और उसी भूमिका में अयथार्थता या भूल होती है तो किस प्रकार की होती है उसकी छानबीन विस्तार से उसी छोटी सी पुस्तिका में किया है। एक आर्टिकल है, प्रयोजन सिद्धि उसका टाइटल है, जिसको चाहिए हीरालाल जी से मांग ले। तो उस विषय पे आज रात्रि चर्चा में भी अपन थोड़ा और विषय प्रश्नोत्तर रूप में ले सकते हैं। इस घड़ी में तो बराबर हमारा ये ख्याल है कि बराबर 10 मिनट चालू है। हाँ वही मिथ्या तो की मंदता कहो या अनुभाग कम होने की बात कहो, उसमें मूल में तो प्रारंभ यहां से होता है कि जिसको परिभ्रमण छूटने की वेदना आ जाए। क्या इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए प्रथम में प्रथम उतनी वेदना आए, उतनी वेदना आए, तीव्र वेदना आए कि जितनी वेदना कभी आई नहीं हो दूसरे कारण से। इसलिए वो बात ऐसे लेते हैं कि किसी एक मनुष्य को कैंसर होता है तो कितने चिंता में आता है, उसको आप कितना भी उपदेश दे दो कभी छोड़ो एक दिन तो मरना ही है, कि कैंसर की चिंता को छोड़ दो, छोड़ेगा क्या? हाँ, 2400 घंटों ये कैंसर कैसे मिटे उसी की चिंता में वो रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। मालूम है कि इस जगत में अभी इसका इलाज तो है नहीं, लेकिन हो सकता है आज तक इलाज नहीं है, कल इलाज का रिसर्च हो भी गया हो, हमें तो तलाश करनी चाहिए ही चाहिए। हाँ, प्रयोजन के विषय में कितना जागृत हो जाता है। इसलिए उसकी चिंता से वो छूट सकता नहीं, और हमारी जो परिस्थिति है मिथ्यात्व और अज्ञान की वो अनंता कैंसर को खड़ा करने वाली है, एक कैंसर को नहीं। तो एक कैंसर से जितनी चिंता हुए इससे कितनी होनी चाहिए, मैथमेटिकली क्या अनंती होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और हमको कितनी हो रही है ये बताइए। हम शास्त्र तो पढ़ते हैं, शास्त्र की अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन मूल में जो होने लायक है तो हुआ ही नहीं। इस ग्रंथ के 195 नंबर के पत्र में उनका बहुत सुंदर बात किया है उन्होंने, अनंत काल से जीव का परिभ्रमण होने पर भी उसकी निवृत्ति क्यों नहीं हुई और क्या करने से हो, उसमें अनंत अर्थ भरा हुआ है और इसकी चिंता किए बिना कैसे कि इस विषय में दृढ़ होकर के तड़पे बिना, हमारे गुजराती में जुर्या विना शब्द लीजो से, हिंदी में उसको तड़पन कहते हैं, तड़पन हुए बिना, चिंतना तड़पना हुए बिना सन्मार्ग की मुक्ति माँ के मार्ग की दिशा का अल्प अंश में भी भान नहीं होता। पूर्व में कभी किसी जीव को हुआ नहीं, वर्तमान में किसी को होता नहीं और भविष्य में किसी को होने वाला भी नहीं है। हमने तो ऐसा जाना है, क्या कहते हैं श्रीमद जी, कि हम हमारे अनुमान से कहते हैं तो हमने ऐसा जाना है। हमको भी एक दफे ऐसा हुआ था तब मार्ग मिला है, इसके पहले मार्ग नहीं मिला है। एक मिनिस्टर को भले ही शेड्यूल कास्ट का हो, हाँ आजकल तो शेड्यूल कास्ट के मिनिस्टर होते हैं ना, वो भी घर पे आए ने तो तैयारी करनी पड़ती है, हाँ ऐसा नहीं चले। तो ये तो परमात्मा को पधारने की बात है, पर्याय के आंगन में परमात्मा कब पधारता है कि इसके लायक तैयारी होती है तब होता है। ऐसी गंदी परिणाम की भूमिका में परमात्मा नहीं आते हैं। कहते हैं कि हमने तो ऐसा जाना है, ये जो तड़पन है, ये जो वेदना है, उसमें अंतःकरण की शुद्धि का प्रोसेस होता है, यानी यथार्थ प्रकार से दर्शन मोह का अनुभव घटने का प्रारंभ होता है, वो यहां से होता है।